ओम शांति। प्रश्नों से पार। आज 22 तारीख क्वेश्चन नंबर 77। मैंने एक कमेंट्री सुनी थी जिसका विषय था कि बैठकर योग करना चाहिए बनाम कार्य व्यवहार में रहते योग युक्त रहना चाहिए। मैंने उस कमेंट्री को सुना और देखा कि दोनों ग्रुप अपने अपने मत को रख रहे हैं, परंतु मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम इस विषय पर बहस कर रहे हैं तो क्या किसी भी पल बिना योग युक्त स्थिति भी हो सकती है? क्या कभी भी ऐसी बीच की स्थिति की अनुमति भी है? एक है यहाँ पर जो डिबेट चली थी एक बार कि बैठकर योग करना और चलता फिरता योग करना, तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसी भी कोई स्थिति है क्या जो बीच की है? क्या उत्तर है? नहीं, बैलेंस का नहीं पूछ रहे हैं, क्या कभी भी ऐसी बीच की स्थिति की अनुमति भी है क्या, तो जिसमें ना तो बैठे हैं और ना तो चल फिर रहे हैं। एक तो यहाँ दो अवस्थाएं हमने चर्चा की थी, एक तो जिसमें हम बैठे हुए हैं और योग कर रहे हैं, दूसरा है चलते फिरते योग कर रहे हैं। अब इनका प्रश्न है कि कोई बीच की स्थिति भी है क्या? हाँ, अगर इसमें भी दो चीजें हैं, बीच की स्थिति यदि ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या ऐसी कोई बीच की योग युक्त स्थिति है क्या, नहीं तो दोनों ही अवस्थाओं में योग किया जा रहा है, एक बैठकर एक चलता फिरता। अगर बैठकर भी नहीं है योग और चलता फिरता भी योग नहीं है, तो उसके बीच में जो हो रहा है वो क्या है? वो व्यर्थ हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है, विकार हो सकता है। एक तो ये पहलू है। दूसरा, जब हम किसी कार्य में इतने व्यस्त हो गए और जहां पर बुद्धि का काम है, तो वो उस अवस्था को योग युक्त नहीं कहा जाएगा, परंतु बाबा ने कहा है कि जिस कार्य में बुद्धि का ज्यादा कार्य होता है उसके पहले बाबा को याद करो और फिर होने के बाद याद करो। और जो कार्य है जहां पर ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे भोजन बना रहे हैं या चल रहे हैं या और भी दिनचर्या के बहुत सारे कार्य है, तो वहां बुद्धि का की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। परंतु हाँ, उन सभी कार्यों में जहां पर बुद्धि का उपयोग किया जाता है, कोई सम सॉल्व कर रहे हैं या कोई चीज की स्टडी कर रहे हैं, कोई परीक्षा कोई इम्तहान दे रहे हैं, उस समय बुद्धि की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो वो बीच की अवस्था है। तो यहाँ पूछा है किसी भी पल, क्या किसी भी पल बिना योग युक्त स्थिति भी हो सकती है क्या? होनी तो नहीं चाहिए, पर ये तो होती है। जब व्यर्थ का तूफान चले तो योग युक्त नहीं होता है व्यक्ति, जब नकारात्मक भाव उमड़ रहे हो तब व्यक्ति योग युक्त नहीं होता है, जब विकारों के सूक्ष्म प्रभाव में आ जाता है तब योग युक्त नहीं होता है, जब बहुत आवेश बहुत इमोशनल हो जाता है, भावना से भर जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तब योग युक्त नहीं होता है, डिप्रेशन में चला जाता है तब योग युक्त नहीं होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है तब योग युक्त नहीं होता है, रोना धोना रूसना रूठना नाराज होना, बीमारी होती है उसमें भी शरीर का भान बहुत आ जाता है, सबको तो नहीं पर जिनका योग का अभ्यास नहीं है उनको, तो योग युक्त न होने के तो बहुत सारे कारण है। ऐसा हो जाए ये तो असौभाग्य। आज मुरली में कहा है ना सुबह बाबा ने, तुम बच्चे बाप को याद नहीं करते, याद करे तो ये असौभाग्य। तो जितना हो सके लक्ष्य यही रखना है, चाहे बैठकर कर रहे तो भी योगयुक्त हो, चाहे चलते फिरते हैं तो भी योगयुक्त हो, जब ही कोई कार्य कर रहे तभी योगयुक्त हो। वो जो केवल बीच की अवस्था है जहाँ पर बहुत बुद्धि का कार्य है, सारी बहुत ज्यादा एकाग्रता जहाँ है चाहिए, कुछ सीख रहे हैं, कोई स्किल कोई टेक्निक, उस समय वो एक अवस्था हो सकती है कि जहाँ याद नहीं है, परंतु उसके पहले याद, बीच में कार्य, फिर याद। पहले याद, आह्वान, बीच में कार्य, धन्यवाद और फुल स्टॉप, या उससे कुछ सीख लेना। तो क्या कभी भी ऐसी बीच की स्थिति हो सकती है कि अनुमति है क्या, ऐसा पूछा है? अनुमति नहीं है, ऐसी कोई अनुमति नहीं है। तो ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। मैं 2011 से ज्ञान में हूँ। बाबा से मुझे बहुत अनुभव हुए, लेकिन पिछले 2 साल से मेरे ऊपर जैसे ग्रहचारी बैठ गई है। जब मैं बाबा के सेंटर पर सेवा करने के लिए रहने लगी, तब से ही ग्रहचारी शुरू हुई। मैं सेंटर पर रहने के लिए जाती हूँ, फिर वापस चली आती हूँ, फिर जाती हूँ। मैं सेंटर पर रहूं उसके लिए कैसी तपस्या करूं? बाबा का आदेश है कि मुझे पालना करनी ही है, लेकिन मैं पालना नहीं दे पा रही, कृपया हेल्प करें। मुझे जेनेटिकली डिप्रेशन है, जो मेडिटेशन से काफी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन अभी मुझसे योग नहीं हो रहा है और मैं फिर से डिप्रेस्ड अनुभव कर रही हूँ। मैं खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रही हूँ इस जीवन यात्रा में खोई हुई आध्यात्मिकता को फिर से हासिल करने के लिए मदद करें। प्रश्न है क्या हो रहा है? पहले तो अच्छे अनुभव होते थे, अब नहीं हो रहे। पहले ठीक थे जब घर में थे, और जब से सेवा केंद्र में गए तब से ग्रहचारी बैठने लगी। पहले और क्या क्या हो रहा है? डिप्रेशन। क्या किया जाए यहाँ पर? सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति ये जान ले कि मुझे डिप्रेशन है। पहले तो ये मानने को ही लोग तैयार नहीं होते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। इस पूरे लास्ट पूरे साल का जो WHO का थीम था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, लेट्स टॉक डिप्रेशन, लेट्स टॉक। जैसे बाकी बीमारियां है, शुगर की बीमारी है, BP की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की है, हार्ट की है, उसी तरह डिप्रेशन भी है। यदि कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है और उसे सबसे पहले तो वो स्वीकार नहीं करता, या तो उसे लगता है कि ऐसा किसी और को नहीं होता है, केवल मुझे होता है, इसके लिए वो बताने से डरता है। पर जैसे बाकी बीमारी है, वैसे ये भी एक प्रकार से बीमारी है। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड अब्यूज से लेके बचपन में क्या क्या हुआ, टीजिंग से लेके स्कूल में क्या क्या हुआ, कॉलेज लाइफ में क्या क्या हुआ, घर में स्ट्रेस है, कोई ऐसी बीमारी है, घर के कोई दूसरे बीमार है, या हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई है जिसकी वजह से डिप्रेस्ड है, या अभी वर्तमान समय में जहां हम हैं वहां पर बहुत सारा द्वंद है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वहां पर हम असंतुष्ट है, जॉब डिससेटिस्फेक्शन है, BK बन गए, यहाँ आ गए, सब कुछ ठीक है, परंतु अपनी सेवा से संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, सेवा में डिप्रेशन है, वो सेवा करने के बाद में कोई उमंग उत्साह नहीं, बस कर रहे हैं, या तो पुरुषार्थ, सब अच्छा है परंतु पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, टाइम भी है, परंतु फिर भी बुद्धि व्यर्थ में है। तो यहाँ सबसे पहले ये जो निदान है अवसाद का कारण क्या है, सबसे पहले ये जानना वो है, और फिर उसका कारण क्या है, उस कारण को ढूंढना। आउटसाइड, अंदर व्यक्ति डिप्रेस्ड रहता है, बाहर से कुछ और ही दिखाई देता है, बाहर से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चिल्लाना, लोगों पर नाराज होना, ब्लेम करना। और यदि उस व्यक्ति को ये बताया जाए कि तुमने उस पर ब्लेम किया, यदि जैसे उसको अपनी गलती बताई जाती है, सारा फोकस अंदर हो जाता है और सेल्फ विक्टिमाइजेशन चालू होता है कि हाँ मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से हुआ, मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, खुद को दोषी देने लगते, परंतु दूसरे ही दिन फिर दूसरों को दोषी देने चालू करते हैं। अगर गलती बताई जाए तो सेल्फ विक्टिमाइजेशन, अगर गलती न बताई जाए तो दूसरों पर ब्लेम। ये एक जबरदस्त खेल है, पर व्यक्ति खुद ही से जान नहीं पाता ये हो रहा है, और बाहर जो दिखाई देता है वो चिड़चिड़ापन, क्योंकि ब्राह्मण क्रोध भी कैसे करे, क्रोध नहीं करेंगे, नहीं तो दूसरे डायरेक्ट कहेंगे क्रोध, जिसके लिए क्रोध नहीं चिड़चिड़ापन, नाराज, दुखी, उदास, डांटना, ये सब बाहर से होगा, परंतु गहरे में जबरदस्त असंतोष है, अवसाद है, दुख है, डिप्रेस्ड है, क्योंकि यहां पर कुछ और भी चीजें चालू हो गई है। एक तरफ तो अगर ये सर्कल है, यहां व्यक्ति डिप्रेस्ड हुआ, यहां कोई जीवन में परिस्थिति आ गई, इस वजह से डिप्रेस्ड हुआ, डिप्रेस्ड होने की वजह से ब्रेन में कुछ केमिकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर, इनकी कमी हो गई, न्यूरोट्रांसमीटर कमी हो गए और डिप्रेस हो गया, डिप्रेस हो गया और न्यूरोट्रांसमीटर कम हो गए, डोपामिन, सीरोटोनिन, नॉरिफिनेफ्रिन, और फिर वापस डिप्रेशन। इसको विशियस साइकिल कहा जाता है, कुचक्र। अब एक बार ये घुमा, फिर दूसरी परिस्थिति आई, फिर घुमा, फिर तीसरी परिस्थिति आई, फिर घुमा, फिर इसकी आदत सी पड़ जाती है, और फिर धीरे धीरे ये केमिकल्स जो है कम होने लगते हैं, और फिर व्यक्ति चाहता भी है अभी किसी पल में, यहां ना कोई बीच की भी अवस्था आएगी, ना तो वो खुद को ब्लेम करेगा ना तो दूसरों को ब्लेम करेगा, पर यहां उसकी बहुत इच्छा है कि वो यहां इस चक्र से बाहर निकले, पर फिर भी नहीं निकल पाता है, क्योंकि अब ये आदत सी बन गई है। लर्नेड हेल्पलेसनेस, लर्नेड हेल्पलेसनेस कहा जाता है इसको। जो साइकिल यहां से चालू हुआ डिप्रेशन का, तो व्यक्ति धीरे धीरे इस चक्र से मुक्त कैसे हो, क्योंकि इसकी भी आदत पड़ जाती है। यहां पर दो चीजें चालू हो रही है, एक कहा सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद को दोषी ठहराना, और दूसरा ब्लेम गेम। एक दिन खुद को दोषी ठहराना, अगर गलती बताई जाए तो फिर दूसरों को ब्लेम करना, और जब दूसरों को वो ब्लेम कर रहा होता है तब वो सेल्फ विक्टिमाइजेशन नहीं कर रहा होता है, परंतु यहां ब्लेम जब वो दूसरों को कर रहा है और उसको समझाया जाए कि दूसरों की कोई गलती नहीं है, तो सीधा अपने ऊपर दोष ले लेता है, फिर इधर से इधर और इधर से इधर घूमता है। या तो ये एक घूमना है और एक दूसरा घूमना भी है, एक तो है मेनिया और दूसरा है डिप्रेशन। यहां बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश होता है यहां, तो यहां एकदम दुखी हो जाता है, कभी खुश कभी दुख। खुश होता है तो बहुत ज्यादा यूफोरिया, मेनिया की स्टेज में जाता है, दुखी होता है तो एकदम ही दुखी हो जाता है, किसी से बात नहीं करेगा, एकदम उदासीन, उदास। ये एक जबरदस्त चक्र है। अभी ये जो प्रश्न पूछा है बहन ने, 2011 से ज्ञान में हूं, पहले बहुत अच्छे अनुभव होते थे बाबा से, उसके बाद में अनुभव होना बंद हो गए, क्या लग रहा है, ग्रहचारी बैठ गई, जब भी सेंटर जाती हूं तो लगता है घर जाऊं, और जब घर में है तो लग रहा है अब सेंटर जाऊं। मुझे जेनेटिकली डिप्रेशन है, और ये जेनेटिकली मतलब हो सकता है उसके माता पिता को भी है, और जब माँ बाप को भी होता है तो बच्चों में होने के चांसेस होते हैं। कोई भी बहुत सारी साइकियाट्रिक बीमारी जो है वो जाती है ऊपर से नीचे, नीचे से, परंपरा में चलती है। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए अब क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जैसे बाकी बीमारियां है व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है, पर ये जो बीमारियां, इस पर जैसे सोशल स्टिग्मा है, समाज की ओर से कलंक लगे हुए है, परंतु फिर भी यह जानना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं जाना जाए तो यह डिप्रेशन कम होने का कोई नाम नहीं लेता है, यह बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर व्यक्ति धीरे धीरे दूसरों को बताने लगता है, व्यक्त करने लगता है, और उसकी जितनी हंसी उड़ाए उतना ही वो अंदर अंदर जाता है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में एक बार एक डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर, उसका एक फ्रेंड है जो सूरत में या कहीं पीजी कर रहा था, एमडी एनेस्थीसिया फाइनल ईयर। तो सुबह फोन आया, उसने कहा मुझे बहुत उदास लग रहा है, क्या मैं करूं। तो इसने बता, अरे तुम क्यों उदास लग रहे हो, यहाँ आ जाओ, यहाँ कहीं घूमने चले जाओ, जैसे सामने से बात करते हैं, ये करो वो करो, कर दिया। और शाम को पता चला उसने हॉस्टल में ही खुद को हैंग कर दिया, चला गया। तो धीरे धीरे डिप्रेस्ड व्यक्ति थोड़े इशारे देने लगता है और फिर कर ही देता है एक दिन। इसके लिए जो भी व्यक्ति कह रहा है कि मुझे उदास लग रहा है, उसको वो भी जैसे हार्ट अटैक मेडिकल इमरजेंसी है, वह भी जैसे ये भी स्पिरिचुअल हार्ट अटैक है। यहां पर भी सब कुछ हो रहा है और ये ज्यादा गहरा है। अभी कल ही एक कन्या को हमने डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल में, पिताजी के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया और सीधा लटका ही दिया, पूरा निशान यहाँ पर, वो खुद ही स्वयं को लटका दिया उसने और पर चलो बच गई। पर बता रहे हैं कि ये एक बहुत ही अवसाद जो है, डिप्रेशन इज मार्टिन सेलिगमन नाम का अभी भी एक व्यक्ति है, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, उसने कहा है डिप्रेशन इज द कॉमन कोल्ड ऑफ साइकोपैथोलॉजी। आज इतना कॉमन हो गया, जैसे सर्दी खांसी होती है ना, वैसे साइकोपैथोलॉजी जो है उसकी ये जैसे सर्दी खांसी है। एवरी ऑल्टरनेट व्यक्ति को कहीं ना कहीं डिप्रेशन है। हाँ, एक डिप्रेशन होता है कि कुछ हो गया जीवन में, किसी ने कुछ कह दिया और डिप्रेस हो गए, तो वो अपने आप ठीक हो गए। पर वो डिप्रेशन जो 6 हफ्ता तक चले, वो फिर मेजर डिप्रेशन में जाता है, वहां ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और ये जो बहन बता रही है कि वहां जाती हूँ तो वहां की याद आती है, यहाँ जाती तो वहां की याद आती हो, पहले बाबा से योग लगता है, अभी ऐसा लग रहा है ग्रह, ब्राह्मण इस तरह के शब्द बहुत कम प्रयोग करते हैं, मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्या कहते हैं, मुझे ग्रहचारी हो रही है, योग नहीं लगता है। परंतु क्लिनिकल डायग्नोसिस यहाँ पर डिप्रेशन है। वो खुद भी कह रही है कि जिनेटिकली है, अर्थात उसके माँ बाप को भी है शायद। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि ये जानना कि है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है मुझे ही है, दूसरे सारे खुश दिखाई देते हैं उसको, पार्टी में जाता है तो अकेला बैठा हुआ है, उसको लगता है देखो ये लोग कितने खुश हैं, मैं ही क्यों उदास हूं। ब्राह्मण परिवार में आता है तो देखता है देखो कितनी अच्छे से सारी सेवा कर रहे, मैं ही सेवा नहीं कर पा रहा हूं, सब कैसे कर सकते, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे है। दूसरा है सीक हेल्प, मदद लेना। अब यहां पर किसकी मदद लेना, डॉक्टर्स की मदद, साइकोलॉजिस्ट की मदद, साइकियाट्रिस्ट की मदद, काउंसलर्स की मदद। यहां व्यक्ति इस चक्र को उसे तोड़ना है, क्योंकि अभी यह चक्र ऐसा बन गया है कि वो चाहता कितना भी हो, पर जैसे अल्कोहलिक होता है एक पीने वाला, वो भी चाहता है अल्कोहल छोड़ू पर नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि कुछ अंदर चेंजेस हो गए हैं। उसी तरह ये भी है कि यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल नीचे चला गया है, तो ये जो केमिकल इम्बेलेंस हुआ है, तो यहाँ हो सकता है कि सबसे पहले थोड़ा सा दवाइयों की जरूरत, काउंसलिंग, अगर छोटा मोटा है तो काउंसलिंग से ठीक हो जाएगा, अगर थोड़ा ज्यादा हो गया और लंबा समय तक चला है, कुछ मास हो गए, वैसे ही फील होता है, खाने की इच्छा नहीं होती है या तो बहुत खाता है, नींद नहीं आती या तो सोता ही रहता है, ये दोनों ही अवसाद के सिम्टम्स है, बहुत बात करता है या तो बिल्कुल ही बात नहीं करता है, बहुत खुश या तो एकदम ही उदास, ये दोनों एक्सट्रीम पर जाता है व्यक्ति मेडिसिंस एंटी डिप्रेसेंट्स। यहां पर हमें लगता है ये जो बहन बता रही है, इसको भी थोड़ी सी दवाइयों की आवश्यकता है, शॉर्ट कोर्स, कि मेडिसिन यहाँ से चालू हो जाएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल थोड़े से ऊपर आएंगे और फिर उसको ठीक लगने लगेगा। यहाँ वो साथ साथ फिर शक्तिशाली दृढ़ संकल्प करे, जो संकल्प ढीले हो गए, यहाँ स्क्रू ड्राइवर बाबा ने कहा है, यहाँ पर प्रतिज्ञा करे कि फिर मुझे इससे बाहर निकलना है, इस परिस्थिति से। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई, दूसरा सीक हेल्प, मेडिकेशंस, काउंसलिंग। उसके बाद में, उसके बाद भी नहीं निकल रहा है तो चेंज प्लेस, स्थान को चेंज करो। 2 घंटा भी मधुबन में आ जाओ बाबा ने कहा है, तो क्या होगा, तो रिफ्रेश हो जाएंगे, मधुबन में वो पावर है। परंतु हाँ, फिर वो 2 घंटा यहाँ आके कर क्या रहा है व्यक्ति, उस पर भी डिपेंड है। यहाँ आकर भी वही संसार फिर से खड़ा कर दिया तो, यहाँ आकर भी वही सब कर रहे हैं जो वहां कर रहे थे, तो यहाँ की भूमि का कुछ फायदा नहीं होगा। ये तपोभूमि है, सेवा तो वहां पर भी कर रहे थे, वहां सेवा कर रहे हैं, यहाँ आते हैं लोग तपस्या करने और यहाँ फिर से सेवा में खो जाते हैं। सेवा करनी अच्छी बात है, परंतु यदि व्यक्ति खास आया किस लिए, यहाँ आके फिर वही सुबह से लेकर रात तक आवाज 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 आवाज, इससे बात उससे बात, यहाँ घूमना वहां घूमना, यहाँ फिरना, ये खरीदना वो खरीदना, खाने में बुद्धि लगी है, घूमने फिरने में बुद्धि लगी है, बातें करने में बुद्धि लगी है, वहां थे तो मधुबन की चर्चा, मधुबन में आए तो संसार की चर्चा चालू है, तो कहां से जाएगा वो डिप्रेशन, जो लेके आए थे वहीं रहेगा और उसी को लेके जाते हैं यहां से। ये स्थान है मौन का, ये स्थान है सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होने का, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। ये स्थान है सॉलिट्यूड का, एकांत का, अंतर्मुक्ता का, तपस्या का, अंतर्मुक्ता की उस गुफा में चला जाने का। ये स्थान है स्वचिंतन का, ये स्थान है सेल्फ अकाउंटिंग, सेल्फ एनालिसिस का, पिछले 6 मास में क्या किया है, यहाँ हम हैं, इसको देखो क्या करना क्या है, क्या किया, क्या गलतियां हुई यहाँ पर, क्यों यहाँ पर डिप्रेस हो गए, क्यों यहाँ उदास हो गए, क्यों किसी को दुखी किया, क्यों हम खुद दुखी हो गए, क्यों आंखों से आंसू आ गए, क्यों डिप्रेस अचानक हो गए, क्यों मूड ऑफ हो गया, क्यों रोना रूठना रूसना, क्यों डिस्टरबेंस, क्यों कोई नुकसान हो गया, क्यों कोई लॉस हो गया, ये सारा का अकाउंटिंग 6 मास, और आगे फिर क्या करना है इसकी प्लानिंग। ये 2 काम मधुबन में जो भी आते हैं उनके लिए है। यहाँ क्या करना है, अभी तक क्या किया, और फिर अभी यहां बैठकर वहां क्या करना है उसकी प्लानिंग बनानी है। यहां बैठकर वहां की प्लानिंग, सेंटर की, घर की, ऑफिस की, जॉब की, ट्रैवल की, घर की समस्याओं की, जो भी है यहां बैठकर। नहीं तो यहां आता है व्यक्ति तो इतना डूब जाता है मधुबन में कि उधर की दुनिया ही भूल जाती है और सोचता है उधर की बातों का बिल्कुल चिंतन नहीं करना है, बस अभी यहीं खोए रहो। पर यहां जब तक है तब तक ठीक है, पर यहां से जैसे ही नीचे आबू रोड से ट्रेन में बैठे और ट्रेन चालू हुई तो उधर का प्रभाव चालू होता है। फिर वहां पहुंचने के बाद जैसे थे, 3-4 दिन मधुबन का प्रभाव रहा और फिर मधुबन का प्रभाव खत्म और फिर उधर का प्रभाव चालू और फिर वही चिड़चिड़ापन, फिर वही डिप्रेशन, फिर वही उदासी, फिर वही संघर्ष, और फिर सोच रहे अभी चलो वापस। तो यहां बैठकर वहां क्या करनी है उसकी प्लानिंग, यहां बैठकर वहां क्या किया है उसका गहन चिंतन, ये दोनों कार्य। तो डिप्रेशन के लिए अगर है तो क्या करना है, स्थान को चेंज करना है। फिर उसके बाद में कुछ मोटिवेटिंग सॉन्ग्स, फिर मोटिवेटिंग लेक्चर सुनना, क्लासेस सुनना। 1 पुरुषार्थ की क्लास हर ब्राह्मण आत्मा ने रोज सुननी चाहिए। वो किसकी सुननी चाहिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जिसका भी सुनेंगे वो कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरी आत्मा है, उसके पास जरूर कुछ ऐसी बातें होगी जो मेरे पास नहीं है। हो सकता है अभी अभी कोई ज्ञान में आया हो, एकदम ही नया है, परंतु कुछ तो ऐसी पॉइंट उसके पास होगी जो पूरी मुरली में नहीं मिला और उसके अनुभव से हमको मिल गई। और वो क्लास सुनना भी ऐसे जैसे कि हम नोट्स उसके निकाल ले, कुछ पहले से लिख के रखे 10 पॉइंट्स, 1 2 3 4। अब क्लास सुन रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट लिख के रखा, पॉज, फिर पॉज, फिर लिखी, फिर पॉज, फिर लिखी। एक तो ये विधि है, या तो फिर लॉन्ग वॉक प्रकृति के सानिध्य में, या कहीं निसर्ग के पास एकांत में छत पर, टेरेस पर, गार्डन, कहीं पर भी बैठकर सुनना, बिना कुछ हाथ में रखे, पेन पेंसिल कुछ नहीं, खाली सुन रहे। एक बार सुना, स्टॉप, उसके बाद याद करो क्या क्या सुना। ये हमको अपने मन का जो मौसम है उसको बदलना है, मन का मौसम, मिलियू इंटीरियर, जिसको मेडिकल साइंस कहता है मिलियू इंटीरियर। मिलियू अर्थात वातावरण, अंदर का जो वातावरण है, एक ढर्रे पर जो चल रहा है मन, एक ही ट्रैक पर चल रहा है, एक लीक बन गई है, उस पर चले जा रहा है, उसको तोड़ना है। उसके लिए जगह हमने चेंज की, वो जगह मधुबन हो सकती है, कोई हिल स्टेशन हो सकता है, कोई दूसरा स्थान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये चीज, और इन्होंने क्या कहा, और अध्यात्म को फिर से कैसे हासिल करें। अब फिर एक सबसे बेस्ट चीज है, सेल्फ मोटिवेटिंग बुक्स आती है। जरूरी नहीं है केवल वो ब्रह्मा कुमारीज की ही बुक होगी। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में चले गए थे, जैसे कि पावर ऑफ नाउ, एकहार्ट टोल नामक एक ऑथर ने किताब लिखी है, पावर ऑफ नाउ। ये जो ऑथर था, जब वो 28 उम्र थी उसकी, 28 साल की उम्र, इतना डिप्रेशन में चला गया, सोच रहा था अब जीवन को, जीवन लीला समाप्त कर दूं, और अचानक उसे कुछ हुआ, साक्षात्कार जैसा कहो या डिवाइन विजन, और अचानक मोटिवेशन आई और पूरा जीवन ही उसका बदल गया। और फिर वो कुछ और दिशा में सोचने लगा, सोच रहा था अब तक जो हुआ मैं इसका क्यों चिंतन कर रहा हूं, केवल मुझे अब में जीना है। और फिर उसने अपनी जो किताब है पावर ऑफ नाउ वो लिखी, धीरे धीरे लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, अपने को लिखने में बिजी कर दिया। एक ट्रीटमेंट डिप्रेशन की ये भी है, क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव एक्टिविटी, वो सारे कार्य करो जो आज तक कभी नहीं किए, जो आज तक हमने किए ही नहीं, हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सोचा ये क्यों करे, ये भी कोई काम है, एकदम नए, बिल्कुल जैसे कि किसी हॉस्पिटल में चले जाओ और सारे पेशेंट्स को कुछ सौगात दे दो, गिफ्ट दे दो। हाँ पूछो कैसे है, अनरिलेटेड, कोई लेना देना नहीं है, कुछ दे दिया, ग्रीटिंग कार्ड दे दी, या स्लोगन कार्ड दे दिया, एप्पल दे दिया, या कुछ दे दिया, फूल दे दिया। फूल तो सबसे बेस्ट वही है फूल दे दिया बस, ये एक आउट ऑफ द योर, मतलब आउट ऑफ द वे जाकर आपने कुछ किया। कोई मेंटल हॉस्पिटल, कोई कुष्ठ रोगी हॉस्पिटल, कोई वृद्धाश्रम, कोई अनाथ आश्रम, कोई ऐसी जगह जो सोशल, लोग सोशल वर्क क्यों करते हैं, शायद अपने अंदर, उनके अंदर भी दुख होता है, वो अपने दुख को बुलाने के लिए सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुशी भी होती है उससे, दुआएं मिलती है। और आप देखेंगे, दादी मनोरिंद्रा क्या करती थी, कोई भी बहन आती थी कहती है दादी मेरा मन नहीं लग रहा है, दादी कहती थी जाओ 7 डेज का कोर्स कराओ, ज्ञान सुनाना चालू करो, म्यूजियम में जाओ ज्ञान सुनाना चालू करो। जैसे ही कोर्स कराना चालू करोगे रह नहीं सकता है, क्योंकि ज्ञान प्रकाश है, डिप्रेशन अंधकार है, कैसे रहेगा डिप्रेशन। सेवा करना चालू करो, ओम शांति भवन में आ जाओ, यहाँ लोगों को ग्रुप्स ले लो और समझाना चालू करो, दूसरों की समस्या हल करने में लग जाओ। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। डिप्रेशन से बाहर निकलना है ना, तो जो डिप्रेशन में है ना उसको बताओ, मैं बताता हूँ, मेरा भी ऐसा ही हुआ था एक बार, अभी हो रहा है ये नहीं बताना, मेरा भी ऐसा ही, एक बार मैं भी ऐसे ही डिप्रेशन में चला गया था, ऐसे चालू करना, हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं तुमको सिखा रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, मैं तुमको सिखा रहा हूं इसलिए कि तुमसे ज्यादा गलतियां मैंने की है। शायरी है ऐसी, कोई शब्द मुझे पता नहीं तुमसे ज्यादा गलतियां मैंने की है, मैं तुमको ज्यादा समझा रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे अधिक होशियार हूं, तुमसे अधिक बुद्धिमान हूं, क्योंकि गलतियां मैंने तुमसे ज्यादा की है इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं। तो ये होशियार नहीं हूं, गलतियां ज्यादा की है, ठोकरे बहुत खाई है, ठोकरे खा खा कर सीखा हूं इसलिए। तो स्वयं को मोटिवेट करना ये सबसे बड़ा काम है जीवन का। दूसरों को तो कर सकते हैं, हम स्वयं को कैसे मोटिवेट करें, कुछ भी करो, पहले तो ये जान लो कि मुझे इस अवसाद से, इस दुख से, इस दर्द से, इस मन के दुखी मौसम से बाहर निकलना है, बदलना है ये मौसम, द इनर क्लाइमेट ऑफ माइंड, द मिल्यू इंटीरियर, और इससे उभर के बाहर निकल जाना है। हाँ, और दूसरी और एक चीज, डिप्रेशन क्या है इसके बारे में पढ़ो, अपडेट करो खुद को, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, ब्रेन में क्या होता है, क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, सब कुछ उसके बारे में। नहीं पता तो पूछो। और ये भी मत करो कि ये मैं गोली तो नहीं खाऊंगा, पहले से ही मान के रखा है मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो वैसे ठीक हूँ, ऐसा नहीं। जरूरत पड़ी तो ले लो और उससे मुक्त हो जाओ। तो खुद ही को मोटिवेट करना। और रहा प्रश्न यहाँ सेंटर पे रहो कि घर पे रहो, ये प्रश्न हर एक का व्यक्तिगत है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ करो, बाबा से टचिंग आएगी, बाबा ही बताएंगे कहाँ क्या करना है। न स्थान बदलेगा, न व्यक्ति बदलेंगे, न परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है, बाबा के महावाक्य है। तीसरा प्रश्न, ये तो बड़ा ही मुश्किल प्रश्न है, मुझे संगम युग में ही शिव बाबा के साथ पाठ बजाना है, बाकी युग में बिल्कुल आना ही नहीं है, इसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं, जिससे मैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में ना आ सकूं। मैं महाराजा ऊंच पद का अधिकारी व प्रजा भी नहीं बनना चाहती हूं, मुझे पूज्य बहुत नहीं बन नहीं कर क्या? मुझे पूज्य बहुत बिल्कुल करना है ना ही पाप करना है, यदि पाप किया तो सजा खानी पड़ेगी और पुण्य किया तो सतयुग में आना पड़ेगा, मुझे तो केवल संगम युग पर ही आना है 5000 वर्ष के बाद। इस कर्म चक्र के डिप्रेशन से बच सकू, इसके लिए आत्मिक स्थिति निरंतर कैसे बनाऊ? ये उठपटांग प्रश्न है, इसका क्या उत्तर देंगे? जैसे एक मरीज डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर जब भी नहाता हूँ शरीर गीला हो जाता है, और जब भी पानी पीता हूँ, जब भी ठंड होती है तो ठंडी लगती है, फैन चलता है तो हवा लगती है, क्या करूँ? तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, रात भर धूप में बैठ के सोया करो, और कुछ नहीं। तो क्या उत्तर है इसका, किसके बारे में, कौन सा ज्ञान? पर अभी अनलर्न कैसे करे, जो सीखा है लर्न किया है उसको अनलर्न करना तो मुश्किल है ना। सबसे पहले तो ये प्रश्न कोई प्रश्न नहीं है। ये समय तीव्र पुरुषार्थ का है, ये सब प्रश्न पूछने का नहीं है। अच्छा चलो, ये किसने बोला आपको कि सतयुग में आओगे? अच्छा चलो, आ भी जाओगे तो भी उधर क्या होने वाला है इसकी चिंता छोड़ो, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। दिस टाइम इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी, इस पल में, इस सदी में, इस पल में सारी सदी छिपी हुई है। पास्ट और फ्यूचर ये सूडो टाइम है, झूठे समय है ही नहीं, झूठा समय है ये, क्योंकि जो हो गया वो अब नहीं है और जो आने वाला है वो आया नहीं है, हमारे हाथ में केवल वर्तमान है। सतयुग में जाओगे कि नहीं जाओगे इसकी चिंता छोड़ो, और इसके पहले कलयुग में क्या थे, द्वापर में आओगे क्या करोगे ये भी छोड़ो, उससे लेना देना क्या है, अभी जीना है, इस पल इस मोमेंट अभी खुश रहो बस। वहां आओगे नहीं आओगे वो छोड़ो ना, आए तो आए, उसका तुमको अभी का थोड़ी ना याद रहेगा, उसके लिए इसका हम कोई विस्तार नहीं कर रहे। दिस मोमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट, यही एक ट्रू टाइम है जिसमें जीना है। या हाँ, प्लानिंग करना अलग चीज है, पर प्लानिंग ही करते रहना ये भी नहीं है। उस दिन भी हमने कहा था प्लानिंग करना अच्छी बात है, परंतु जीना इस पल में है। जैसे योग में कर रहे हैं तो आगे की प्लानिंग चल रही है, वो कर रहे हैं तो उसके आगे की मूवमेंट की प्लानिंग, केवल प्लानिंग ही प्लानिंग कर रहे हैं। कोई लोग होते हैं खाली ट्रैवलिंग की प्लानिंग करते हैं, अभी यहां पहुंचे ना, अभी हमको वहां जाना है, वहां की फ्लाइट और फिर वहां की प्लानिंग, फिर वो देश में चले गए, फिर वहां से इधर की प्लानिंग, फिर वहां से उधर की प्लानिंग, एंजॉय कहीं का नहीं करेंगे। यहां से स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड की एक लेक में नौका विहार कर रहे हैं। एक अनुभव सुनाया है किसने, मुझे याद नहीं किसने, विदेश का एक ऑथर है, उसने एक अनुभव सुनाया है कि एक भारत का व्यक्ति आया स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड की नेक में नौका विहार चालू है, ठीक है, और वहां बैठकर केवल भारत की ही नदी ये झीलों का वर्णन कर रहा है कि भारत की झील जो थी ना ऐसी थी, भारत की जो झील थी ना ऐसी थी, भारत की झील ऐसी थी वैसी थी, वो पूरा नौका विहार हो गया। और जब आया और कहा कि बहुत ही अच्छी झील है तुम्हारी, बोले तुम्हारी, तुमने ये देखी ही नहीं, तुम थे उधर, इधर थे ही नहीं, जब यहां है तो वहां पर है, वहां है तो यहां पर है, वहां से निकले फुल स्टॉप, अब यहां हो पूरा फोकस इधर। हाँ, प्लानिंग करना बहुत अच्छी बात है, सुबह प्लानिंग कर लो, अमृत वेले के बाद बाबा ने टाइम दिया है सारे दिन भर की, सारे दिन भर ही प्लानिंग नहीं करते रहना है, फिर काम कब करोगे? जैसे मुरली रिवाइज करनी है, मुरली रिवाइज करनी है, उसका मुझे एक घंटा पढ़ना है, ठीक है, यहां सुनाना है कुछ, पर वो ही चल रहा है बुद्धि में, सुनाना है सुनाना है सुनाना है। भाषण जो भी यहां पे, जो भी आप लोग टॉपिक सुनाते हो, आपको अगर एक टॉपिक दिया है, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, आप वो सुनाते सुनाते यही सोच रहे हैं, मैं क्या बोलू, मैं क्या बोलू, मैं क्या बोलू, मैं क्या बोलू, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है। एक्चुअली उस टॉपिक से भी उपराम होना होता है तो ही उसके ऊपर वास्तविक चिंतन, उस टॉपिक में अटैचमेंट हो जाता है व्यक्ति का। उस टॉपिक में भी अटैचमेंट नहीं चाहिए, उस चिंतन करते करते ये विषय है और ये हम है, और हम अगर खाली उसी का सोचते रहे, उसी का सोचते रहे, एक रीति से उससे हम जुड़ जाते हैं और उस विषय के थोड़ा भी बाहर नहीं निकल सकते। ये मुरली है, मुरली पढ़ रहे, एक बार दो बार दस बार पढ़ ली, बस वो मुरली में ही फंसे हुए है। मुरली के बाहर आत्मा निकल जाए और फिर वहां उस स्थिति में बैठकर इसका चिंतन करे, ये नहीं हो पाता। तैयारी पूरी चाहिए, पर हम कह रहे हैं चिंतन, अर्थात चिंतन अशरीरी अवस्था में किया जाता है, माइंड को उछाल दो इस सृष्टि में, इस कायनात में, वहां पर फिर वो उससे संबंधित जो जो बातें हैं वो उधर से ढूंढ ढूंढ के लाकर इसके साथ जोड़ेगी, तो वो समझ में आएगी। लोग पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, वही एक बार पढ़ा दूसरे बार, शब्द भी वही है, वही वही शब्द है, उन शब्दों से भी अटैचमेंट है, उन शब्दों से भी बाहर नहीं जाती है। इसके लिए प्लानिंग, कंटिन्यूअस प्लानिंग नहीं करते रहना है। प्लानिंग एक बार कर दी, नाउ इम्प्लीमेंट, फिर वापस, हाँ उसका फिर एनालिसिस करो शाम को, स्वॉट एनालिसिस। लास्ट प्रश्न, मैं 2016 जनवरी से ज्ञान में आई, अच्छा लगा, शुरू में तो जैसे यह नशा था कि रात को 1 बजे योग शुरू कर देना, सारा दिन बाबा की याद में रहना, अब वो उत्साह नहीं है, अमृत वेला मिस हो जाता है, अब दिन में बार बार बाब की याद करना मुश्किल होता है, फिर रोना आता है, क्या करे जो दोबारा वही एनर्जी अनुभव हो, वह उत्साह व नशा चढ़े। क्या उत्तर है? आए पहले थे तो बहुत ज्यादा नशा था, भगवान मिला भगवान मिला भगवान मिला, 1 बजे 2 बजे यह अमृत वेला बहुत शक्तिशाली, मुरली भी बहुत नशा, दिन में बहुत सेवा, क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर बाबा ने ही मुरलियों में दिया है कई बार। एक बार एक मुरली में प्रश्न भी था, प्रश्न और फिर उसका उत्तर था कि पहले जो नशा था बाद में क्यों कम हो जाता है, क्या उत्तर दिया था? क्या उत्तर क्या दे अभी, क्या किया, मतलब ऐसा हुआ क्यों? पैथोफिजियोलॉजी, हाँ बैलेंस नहीं, पर बैलेंस करना चाहिए ना, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे बाबा की मदद होती है तो चलो ठीक है, पर क्या हुआ ऐसे जो यहां से चालू की जर्नी, ए से चालू की, यहां पर ग्राफ ऊपर ऊपर चला गया और फिर धीरे धीरे कम होता गया और अभी तो निगेटिव जा रहा है, अभी यहां पहुंच गया, ये लाइन है, और कभी कभी तो विकर्म भी हो रहे हैं, नीचे चला गया इतना कि यहां से ज्ञान में आए, यहां पर थोड़े कम विकर्म होते थे, यहां तक ये कम विकर्म थे, यहां पर ज्ञान में आए पॉइंट ए, फिर यहां से एकदम नशा चढ़ा ऊपर पहुंचे, कुछ साल तक ठीक रहा, फिर उसके बाद में प्लेट्यू आ गया, कोई चेंज नहीं, वही अमृत वेला, वही मुरली, वही सब कुछ, और फिर एक समय आया कि फिर तो उमंग उत्साह ही कम होने लगा, फिर जीरो तक पहुंच गए, और फिर उसके भी आगे एक ऐसी स्थिति आई कि अब तो निगेटिव में जा रहा है, जो पाप पहले भी नहीं करते थे वो यहां करने लगे। हाँ, एक कारण तो यहाँ पर सब ठीक था, क्योंकि यहाँ जब आए थे तो दृष्टि स्व केंद्रित थी, इसके लिए संपूर्ण केवल ध्यान बाबा की ओर था, मुरली की ओर था, सब कुछ नया था, यहाँ पहुंचते पहुंचते सब कुछ पुराना हो गया है, यहां पहुंचते पहुंचते अब बहुतों के अवगुण देखना यहां से चालू हो गया। ये पीरियड में, ये प्लेट्यू फेज में, यहां पर वो सारा दिखने लगा है। सेंटर की बहन के अवगुण दिखने लगे हैं कि ये भी ऐसी है। पहले समझा था ये तो देवी है, ये तो वही है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, पर बाद में पता चला कि इसमें भी वही सारी चीजें जो मुझ में है। तो यहां से अवगुण देखने सारे चालू हो गए। फिर यहां पे कुसंग भी आ गया। फिर यहां ऐसे कुछ साथी मिल गए जो पुरुषार्थ विहीन, योग मुक्त और ज्ञान मुक्त है। ज्ञान मुक्त और योग मुक्त साथियों का संग यहाँ पर मिला। और उसके बाद फिर धीरे धीरे परचिंतन, परदर्शन, और फिर यहाँ मीडिया और व्यर्थ, और शायद यहाँ पर बहुत बिजी भी हो गए। पता चला कि बाबा की सेवा के लिए करना है, पैसे भी चाहिए, ये भी चाहिए। फिर यहाँ वो सारा चालू हो गया और यहाँ पहुंच गए। और यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पहुंचते पहुंचते मुरली थोड़ा मिस होने लगा है, ज्ञान थोड़ा कम होने लगा है, चिंतन खो गया। यहाँ तो चिंतन की जरूरत नहीं थी, यहाँ वैसे ही नशा चढ़ गया था। परंतु आगे जीवन में निरंतर नशा रहे उसके लिए जबरदस्त चिंतन चाहिए, मनन चाहिए, अध्ययन चाहिए। ये तो सब कुछ खो चुका है यहाँ पे। और यहाँ निगेटिव हो गया है व्यक्ति इन सब के प्रति, सारे यज्ञ के प्रति, क्योंकि देख रहा है ये भी ऐसा है, ये 40 साल से है, इसमें ऐसे गुण है, ये इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, ये भी ऐसा करते। फिर यहाँ से फिर सब कुछ करते करते यहाँ फिर चालू हुआ इंटरनेट, मोबाइल, मीडिया, यूट्यूब, और ये करते करते यहाँ फिर कुछ देख रहा है, विकार, हिंसा, और फिर ग्राफ नीचे नीचे, और फिर यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर कम होने लगेंगे, और फिर डिप्रेशन। पर बता भी नहीं सकता क्योंकि इतना समय हो गया, अभी समय भी तो ज्यादा हो गया ज्ञान में। फिर कैसे बताएंगे कि हम डिप्रेशन ऐसे बताएंगे, हमारा अमृत वेला मिस होता है रोज ऐसे बताएंगे, हमारा अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होता ऐसा बताएंगे किसको? तो यहाँ तो योगी स्टेटस का क्या होगा? तो व्यक्ति डूब जाता है। कैसे ब्रेक करे इस भी साइकिल को? सबसे पहले तो यहाँ जो नशा था उस नशे को वापस लाने के लिए वापस ABCD से चालू करना पड़ेगा। फिर से वही मुरली, फिर से ज्ञान चिंतन चालू करो, एकांत, मौन, अंतर्मुक्ता। क्यों हम दूसरों को देखना चालू किए? क्या इसलिए आए थे यहां? मैं यहां क्यों आया हूं? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरों के अवगुण देखने? अच्छा, हो सकता है यहां कोई बड़ी बीमारी आ जाए। हम देखते हैं हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे भाई बहने, अभी तक सब ठीक था, एक बड़ी बीमारी आ गई, चले गए, पूरा ग्राफ नीचे हो जाता है। असहाय अनुभव होता है, बेचैनी होती है, क्या हो गया, क्या होगा, क्या हो गया, हलचल में आ जाते हैं। थोड़ा सा दर्द होता है तो लगता है पता नहीं ये क्या है, ये कुछ थोड़ा सा लग रहा है गांठ, कैंसर तो नहीं है, सारी टेस्ट सामने है, सब निगेटिव है, फिर भी भर गया है अंदर, नींद नहीं आती है, बेचैनी, अनिद्रा। तो इस सर्कल को ब्रेक करने के लिए वापस सबसे पहले यहाँ संगठन का आधार लेना पड़ेगा, कोई भी संगठन, जैसे मधुबन में ये संगठन बना है। आकर खाली बैठ जाना तो 10 मिनट भी अगर कोई बैठ जाए ना, तो उसको ये संगठन का बल मिलेगा, चाहे ज्ञान का संगठन, चाहे योग का संगठन, चाहे मधुबन बाबा का कमरा या ओम शांति भवन, संगठित यहाँ योग चल रहा है, वो योग की शक्ति आत्मा को ऊपर उठाएगी। पहली बार तो बाबा ने हमको बहुत मदद की, परंतु अभी खुद मदद करनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी आत्माओं से, ब्राह्मण आत्माओं से, उसमें से ढूंढना पड़ेगा इस पूरे परिवार में तीव्र पुरुषार्थी कौन है। तीव्र पुरुषार्थियों का भी तो अकाल पड़ा हुआ है। तो ढूंढना पड़ेगा CCTV लगाकर, कहां कौन दिखता है तीव्र पुरुषार्थी, हाँ ये दिख रहा है थोड़ा, ये था दादी की क्लास में, जरा ध्यान से, इसको बड़ी खुशी हो रही थी, तो कुछ तो इसको अंदर लग रहा होगा, अंदर खुशी में झूम रहा था, ये इसके पास जरूर कुछ होगा। पूछो उसको क्या किया जाए, मदद लेना, राय लेना बहुत अच्छी बात है। रामायण में दिखाया है राम मार ही रहा है रावण को, कभी ये सिर काटता है, वो सिर काटता है, फिर भी सिर वापस वापस आ रहा है। राम भी डिप्रेशन में ही जाने की हालत में था, इतने मारने के बाद भी वापस सिर आ जाता है, क्या किया जाए? रावण को ये सिर काटा, फिर से आ गया, फिर उसने पूछा विभीषण से काउंसिलिंग, क्या किया जाए, नाउ टेल मी। जब विभीषण को पूछा, विभीषण ने तब तक बताया नहीं क्या किया जाए, वो भी देख रहा था, करते रहो करते रहो, आना तो मेरे पास है, आपको भी ब, भगवान होंगे पर आना मेरे पास है क्योंकि मुझे पता है। और विभीषण बताता है कि वो अमृत कलश पेट में है, पेट में मारो। आपका जो पुरुषार्थ चल रहा है गलत दिशा में चल रहा है, कितना भी मारो वो संस्कार कटेगा नहीं, जाएगा नहीं, इधर है बीज उसका। शायद बीज बचपन में है, शायद बीज चाइल्डहुड अब्यूज में है, चाहे बीज कॉलेज टीजिंग में है, कहीं ना कहीं चिढ़ाते थे लोग, वो अभी भी याद है। चाहे बीज बचपन की कोई कॉलेज फ्रेंड्स के समय इच्छा होगी, कोई लौकिक डिजायर, लौकिक एम्बिशंस थी, बहुत आगे नाम कमाना है संसार में, वो इधर ब्राह्मण परिवार में आ गई, वो इच्छा अचानक से उभर के आ गई। तो मदद लेना, ग्रुप का हेल्प लेना, क्लासेस, बुक्स, ये सारी चीजें, संगीत, म्यूजिक इज द फूड फॉर लव, म्यूजिक का आधार लेना, ये सब करते करते खुद ही को अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा और बहुत सारी चीज को नो करना पड़ेगा। स्टॉप, एक्सपेरिमेंट करके देखो, डिसेबल कर दो सारा, कोई जरूरत नहीं है। वो ऑडियो आता है ना, ऑडियो से सुना, वो यूट्यूब से जाके कुछ क्लास सुनने की जरूरत नहीं है। डिसेबल इट फॉर वन वीक, वो भी एक यूट्यूब का जबरदस्त एडिक्शन है। वो यूट्यूब एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल से कंपैरिजन किया है यूट्यूब का। ब्लैक होल जैसे वो ब्लैक होल में होता है ना, उसमें कुछ भी चीजें सक कर लेता है, वैसे यूट्यूब भी सक कर लेता है। जाता है व्यक्ति कुछ ढूंढने और एंड अप होता है कहीं और से। इसके लिए स्टॉप इट, नो नीड, डिसेबल कर दो उसको, देखने की आवश्यकता ही नहीं। जो सुनना है वो, अगर देखना ही है तो गूगल में जाओ, गूगल में जाकर यूट्यूब टाइप करो, वहां पे उतना सुनो और बाहर आ जाओ, वैसा भी सुना जा सकता है। वो ऐप से सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें माया है, उसको डिसेबल इट। तो ये जो भी है इतना भी डिसेबल कर दोगे ना, तो निगेटिव से कम व्यक्ति यहां तक आएगा। फिर यहां से जीरो से जर्नी चालू करो ऊपर, फिर धीरे 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 अपने आप को उठाओ और फिर शिखर तक पहुंचना है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। ओम शांति।